लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की राजवीर के साथ असल में क्या हुआ था। अब आगे, उस दिन के बाद तो वो लोग अपनी जिंदगी की खुशियों को सेलिब्रेट करने में इतने खो गए थे कि किसी ने भी ये जानना जरूरी नहीं समझा था कि राजवीर मरा है या नहीं, या उसे जलाया गया या नहीं। और अब इस तरह से अरमान की यादों पर हमला हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजवीर का हाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजवीर ही अरमान को इस तरह का दर्द देना चाहता था। वहीं आस्था परेशान होकर पूरी तरह से गहरी सोच में डूब चुकी थी। उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। अचानक वंशिका और आस्था को प्रोफेसर साहब ने वापस से लैब से बाहर निकलने का इशारा किया और जल्दी ही वे लोग बाहर आ गए। बाहर आकर आस्था ने अपने सामने बैठी हुई मारिया को देखा। मारिया को अपने सामने देखकर आस्था को कुछ खास हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मारिया अपनी क्वीन की सिक्योरिटी के लिए वहां आई है। लेकिन प्रोफेसर और वंशिका दोनों ही मारिया को वहां देखकर हक्का बक्का रह गए थे। वंशिका ने तुरंत कन्फ्यूज्ड होकर उससे पूछा, मारिया दीदी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? तभी मारिया ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, क्वीन की लास्ट लोकेशन यही थी, इसलिए मैं यहाँ क्वीन का इंतजार कर रही थी। कहीं ना कहीं मारिया की इतनी तेज और इंटेलिजेंट सोच देखकर आस्था काफी इम्प्रेस्ड हुई थी। फिलहाल अब मारिया को अपने सामने देखकर आस्था ने उसे तुरंत गले से लगा लिया। एक पल के लिए आस्था खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तरफ उसका पति उससे छिन जाएगा और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक बार फिर जिंदा होकर उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। ये सच उसके लिए बहुत ही ज्यादा कड़वा और दर्दनाक था। आस्था की आंखें दर्द से भरी थीं, उसकी आंखें नम थीं और नज़र धुंधली। फिलहाल मारिया के मुंह से आस्था को दिलासा देने के लिए दो शब्द भी नहीं निकले। उसने केवल बिना कुछ कहे आस्था की पीठ को दो बार थपथपाया। तब आस्था ने आह भरी और खुद के इमोशंस को छुपाते हुए उसने प्रोफेसर की तरफ देखकर रिस्पेक्टफुल अंदाज में पूछा, सर, अब इस वायरस के बारे में आपको पता चल गया है तो क्या आप मेरे पति की यादें एक बार फिर से वापस लाने के लिए हमारी मदद करोगे? आस्था की बातें सुनकर प्रोफेसर साहब ने अगले ही पल वंशिका की ओर गंभीर नजरों से देखा और उससे कहा, वंशिका, मैं तुम्हारे साथ कुछ कोटेशन और बाकी सारी चीजें शेयर कर दूंगा, लेकिन हम केवल 60% ही उम्मीद कर सकते हैं कि हम वो वायरस का एंटीडोट बना पाएंगे, क्योंकि 40% चांस है कि हम वो वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाएंगे। पर हाँ, हम कोशिश जरूर करेंगे, और राजवीर चाहे तो उस वायरस का एंटीडोट भी बना सकता है। जहां तक मैं राजवीर को जानता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसका एंटीडोट भी बना चुका होगा। आस्था को ये बात सुनकर झटका सा लगा और वो पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। इसका मतलब साफ था कि अगर राजवीर ने अरमान को वायरस दिया है तो उसका एंटीडोट भी पहले ही बना चुका होगा, और वो शायद उसे उस वक्त इस्तेमाल करने वाला था जब सब लोग उसके सामने मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल आस्था ने गहरी सांस ली। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और प्रोफेसर प्रशांत से विदा लेकर जल्दी ही मारिया के साथ सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो गई। आस्था के दिमाग में बार बार राजवीर का चेहरा, उसका नाम और उसके किए गए सारे कारनामे उमड़ रहे थे। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका अतीत इस तरह से एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। कहाँ तो वो लोग एक सुकून भरी जिंदगी अपने बेटे के साथ गुजारने के लिए अलग अलग प्लान बना रहे थे, और जब से अंश की किडनैपिंग हुई थी तब से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी किडनैपिंग के पीछे भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राजवीर का ही हाथ था। अब ये सारी सच्चाई उसकी आंखों के सामने आने लगती है। फिलहाल अब आकाश, सुमित और बाकी चारों इस बात को जानने के लिए बेकरार थे कि आखिरकार अरमान को वायरस किसने इंजेक्ट किया। वो लोग उन्हें फटाफट कॉल करने लगे ताकि उन्हें जल्दी ही घर वापस से बुला सकें। तब वंशिका ने जल्दी ही ध्रुव को मैसेज छोड़ दिया था कि वे लोग घर पहुंच रहे हैं और वो सब भी जल्दी से घर पहुंचे, क्योंकि उन्हें इस वक्त उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इतनी इंपॉर्टेंट बात फोन पर नहीं बताई जा सकती थी, इसीलिए उन्हें मिलकर ही बात करनी होगी। फिलहाल अब जल्दी ही आस्था मारिया के साथ सिंघानिया मेंशन पहुंच गई। वहीं अरमान गुस्से से तमतमाया हुआ बालकनी में खड़ा था और बेसब्री से मारिया के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मारिया आस्था और वंशिका के साथ आ रही है तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। वहीं आस्था, जिसने अरमान को बालकनी में खड़े हुए देख लिया था, वो सीधा अंदर नहीं गई। कुछ पल रुककर वो अरमान को बेचैनी से देखते हुए वहीं नीचे खड़ी हो गई। अरमान भी आस्था को गुस्से से घूरते हुए खतरनाक अंदाज में देख रहा था। उसकी आंखों का तीखापन किसी को भी डराने के लिए काफी था, लेकिन आज आस्था पूरी तरह से बेपरवाह होकर अपने पति को देख रही थी, क्योंकि उसका पति इस वक्त बिना यादों के फिर से हार्टलेस हो चुका था। एक बार फिर उसके सारे इमोशंस खत्म हो चुके थे। एक बार फिर उसका पति वही डेविल, वही पिशाच बन चुका था जिसे आस्था ने एक नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश की थी। उसका दिल तो कर रहा था कि वो दौड़कर अपने पति के पास जाए और उसे गले से लगा ले, उसे सारी बातें बता दे कि वो उसके दिल का सुकून है, उसकी मोहब्बत है, वो खुद को इस तरह से उससे दूर नहीं रख सकती। आस्था का चेहरा भावनाओं से भरा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वहीं अरमान, जो लगातार आस्था को एकटक देख रहा था, वो उलझन में पड़ चुका था। उसने अपने मन में सोचा, क्या इस लड़की को कुछ अकल नहीं है, जब देखो मुझे घूरना शुरू कर देती है। आज सुबह भी नाश्ते के टेबल पर ये मुझे ऐसे ही देख रही थी, आखिर ये मुझसे चाहती क्या है। सचमुच ये दुनिया की सबसे इरिटेटिंग लड़की है। ये सोचते हुए अरमान गुस्से से एक कदम पीछे हटा और अपने कमरे में चला गया। अरमान को इस तरह जाते हुए देखकर आस्था को एहसास हुआ कि शायद अरमान ने उसे एक बार फिर गलत समझ लिया होगा। अगर वो इसी तरह अपने पति को देखती रही तो अरमान को यही लगेगा कि वो उस पर लाइन मार रही है, उस पर चांस ले रही है, या फिर वो पैसों के पीछे भागने वाली एक लड़की है और वो अरमान को फंसाना चाहती है। क्योंकि अरमान की सोच अभी भी वही थी कि औरतें सिर्फ पैसों की भूखी होती है और प्यार, रिश्ते, जज्बात औरतों के लिए कोई मायने नहीं रखता। फिलहाल आस्था भारी कदमों से अंदर चली गई और जैसे ही अंदर गई उसने देखा कि नानी माँ, रौनक, राधिका और दादाजी सब आस्था और वंशिका के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नानी माँ तो इसी बात से घबराई हुई थी कि इस वक्त वो पूरी तरह से अरमान की फिक्र करने लगी थी और सीधा आस्था को देखकर तुरंत उसके पास में बोली, क्या हुआ गोरी, तू इतनी उदास क्यों है, बताना क्या कहा उन्होंने। हाँ, हमारे दामाद जी कब तक ठीक हो जाएंगे, तुम कुछ भूल क्यों नहीं कर रही हो। तभी आस्था ने एक नजर नानी माँ को देखा और वो आगे बढ़कर उसने नानी माँ को गले से लगा लिया था, क्योंकि वो राजवीर के बारे में बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने दादाजी और बाकी घर में किसी मेंबर्स को भी इस बात के बारे में नहीं बताया कि राजवीर जिंदल जिंदा है। फिलहाल नानी माँ को गले से लगाने के बाद आस्था नानी माँ को नॉर्मल एक्सप्रेशन से बोली, कुछ नहीं नानी माँ, प्रोफेसर साहब ने बोला है कि थोड़ा वक्त लगेगा और वो उस वायरस का एंटीडोट भी बना लेंगे, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला तो ये सुनकर कहीं ना कहीं नानी माँ ने चैन की सांस लेते हुए कहा,
बिटिया हमें तो लग रहा था जरूर कोई ना कोई बड़ी बात हुई होगी, अच्छा हुआ चलो प्रोफेसर साहब को दामाद जी की बीमारी का इलाज मिल गया, अब देखना कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। ये बोलते हुए कहीं ना कहीं नानी माँ की बातों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। फिलहाल अब आस्था ने नानी माँ के हाव भाव को गौर से देखकर पूछा, क्या बात है नानी माँ, आप कुछ उदासी लग रही हैं, कुछ बात हुई है क्या, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं। तब नानी माँ ने हामी भरते सिर हिलाया और जल्दी से बोली, अरे बेटा क्या बताऊँ क्या हुआ, तुम सोच नहीं सकती कि हमें कितना ज्यादा डर लग रहा है, बताएं तुम्हें अरमान जी के ऊपर अंश ने सुसु कर दिया। ये सुनते ही आस्था एक पल के लिए दंग रह गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, आप मुझे पूरी बात बताइए नानी माँ। इसके बाद नानी माँ ने अंश का अरमान की गोद में जाने से लेकर उसके ऊपर सुसु करने की सारी बातें आस्था को बता दी थीं। ये सुनकर अचानक आस्था के दिमाग की बत्ती जल उठी, उसने अगले ही पल आगे बढ़कर एक बार फिर नानी माँ को गले से लगाकर उनके माथे को चूमते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नानी माँ, आप नहीं जानती कि आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी, थैंक यू सो मच नानी माँ। उसके मुंह से ये शब्द ये सुनते ही नानी माँ अगले ही पल पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वो आश्चर्य से बोली, आखिरकार ऐसा भी क्या कर दिया हमने जो गुरी बिटिया तुम हमें इतना धन्यवाद दे रही है, और हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल वंशिका, जो कि राजवीर के जिंदा होने की खबर सुनने के बाद काफ़ी हद तक मायूस हो गई थी, वो अब आस्था को इतनी नॉर्मली देखकर थोड़ी हैरान रह गई और वो उससे सवाल जवाब करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त आस्था ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। तब जल्दी से आस्था आगे गई और राधिका की ओर देखते हुए सॉफ्टली बोली, थैंक यू राधिका दीदी और रौनक, आप दोनों ने हमारे अंश का बहुत ध्यान रखा है, कहीं इसने मेरी गैर मौजूदगी में आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना। जैसे ही आस्था ने अंश को थोड़ा सा लाड जताते हुए ये पूछा तो ये देखकर सभी मुस्कुरा दिए थे। वहीं दादाजी ने आस्था के सर पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाया, शाबाश बेटी शाबाश, मुझे पूरी उम्मीद है ये दुख की घड़ी भी बहुत जल्द बीत जाएगी, क्योंकि मेरी बच्ची सब ठीक कर देगी। जैसे ही आस्था ने दादाजी की बातों में अपने लिए इतना ज्यादा विश्वास देखा तो वो काफी खुश हो गई थी। फिलहाल आस्था ने जल्दी से अंश को गले से लगा लिया था और उसके गोल गोल प्यारे प्यारे गोलमटोल से गालों पर किस देते हुए बोली, थैंक यू मेरा बच्चा, तुम जानते हो तुमने मम्मा की कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी है, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे डेविल डैडी की आकड़ को कैसे ठीक करना है। अंश तो कन्फ्यूजन से अपनी माँ को देखने लगा था, मानो कहना चाह रहा हो, मम्मा मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, और आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी, आप जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी, ऊपर से डेविल डैडी मुझ पर चिल्ला दिए थे। लेकिन फिलहाल अंश की मासूमियत को देखकर आस्था पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी। ठीक उसी वक्त अचानक टाइगर वहां पर आकर खड़ा हो गया और आस्था को देखते हुए धीमे स्वर में बोला, क्वीन आपको किंग ने बुलाया है, प्लीज पहले आप जाकर उनसे मिल लीजिए। इतना बताकर वो तुरंत वहां से चला गया। वहीं आस्था, जो कि पहले से कहीं ना कहीं जानती थी कि अरमान अब उसकी किसी भी वक्त क्लास लगाने वाला है, वो ये सुनकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान मारिया को डांट कर कहता है कि आस्था को किसी भी तरह की सिक्योरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक मामूली सी केयरटेकर है, कहीं की प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो तुम उसे सिक्योरिटी देने गई थी। पहले अरमान ने मारिया को थोड़ा बहुत डांटा, उसके बाद उसने शांत आवाज में मारिया को बताया कि वो जल्द से जल्द इस एंग्री बर्ड को यहाँ से दूर भेजना चाहता है। कुछ भी करो, फटाफट से उस एंग्री बर्ड के पति का पता लगाकर उसे मेरे सामने लेकर आओ। अरमान के मुंह से ये बात सुनकर मारिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर उसने देखा कि आस्था दरवाजे पर आ गई है तो वो चुप रही। आस्था अब तक सारी बात सुन चुकी थी कि अरमान ने आस्था के पति की यानी खुद को तलाशने की जिम्मेदारी मारिया को दी है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई। फिलहाल जल्दी ही उसने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटा दिया था। अब दरवाजे पर आस्था को देखकर अरमान ने मारिया को वहां से जाने का इशारा किया। तब मारिया जल्दी वहां से बाहर निकल गई। आस्था को सामने देखकर, उसके गोद में अंश को देखकर अरमान उसे घूरते हुए बोला, ये सब क्या है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली सी केयरटेकर होकर मेरी बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर जाने की? तुम समझती क्या हो अपने आप को? और एक बात बताओ, क्या तुमने अपने बच्चे को कोई तमीज नहीं सिखाई है? क्या तुमने उसे कोई मैनर्स नहीं सिखाया है कि उसे कहाँ सुसु करना है कहाँ नहीं करना है? कैसी माँ हो तुम? अगर तुम्हें शहर घूमना ही था तो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर भी तो जा सकती थी।